फासीवाद की आलोचना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अस्थिर वातावरण में इटली, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, पोलैंड आदि अनेक राज्यों में फासिस्ट प्रवृत्ति का विकास हुआ और ऐसे सुसंगठित फासीवाद दल स्थापित हुए जिनका वहां की शासन व्यवस्था पर प्रभुत्व स्थापित हो गया। इससे स्पष्ट है कि जब लोकतंत्रीय ढांचे में पनपने वाली राजनीतिक दलबंदी अत्यंत दूषित हो गई और जब देश की शासन व्यवस्था का संचालन सार्वजनिक हित के स्थान पर दलीय हितों की साधना की दृष्टि से किया जाता है तो फासीवाद की उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता। फासीवाद व्यवस्था के अंतर्गत इटली व जर्मनी ने जो उन्नति की वह इस बात का प्रमाण है कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में फासीवादी अधिनायक तंत्र अत्यंत हितकार हो सकता है। यूरोप के इन देशों में फासीवादी व्यवस्था के अंतर्गत बहुत अधिक आर्थिक उन्नति हुई और फासीवाद ने इन देशों में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का भी कार्य किया। लेकिन यूरोप के इन देशों में फासीवाद को इस प्रकार की व्यवहारिक सफलताएं प्राप्त होने पर भी फासीवाद को सैद्धांतिक या व्यवहारिक दृष्टि से श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से तो फासीवाद में अनेक रूटियां हैं, व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी फासीवाद में जो सफलताएं प्राप्त की वे अल्पवयस्क रूप में अल्पकालीन थीं और मानवीय स्वतंत्रता के रूप में उनका बहुत अधिक मूल्य देना पड़ा था। फासीवाद की प्रमुख आलोचनाएं निम्नलिखित आधारों पर की जा सकती हैं। पहला, फासीवाद विचारधारा स्पष्ट और संतुलित नहीं है। प्रथम तो फासीवाद कोई दर्शन है ही नहीं और यदि उसे दर्शन मान भी लिया जाए तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पूर्ण रूप से अवसरवादी होने के कारण यह अनेक अनिश्चित और परस्पर विरोधी बातों से भरा है। फासीवाद में अनेक राजनीतिक विचार मिलते हैं जिन्हें परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार ग्रहण कर लिया गया है, लेकिन जिनके आधार पर एक क्रमबद्ध और सुसंगठित विचारधारा का विकास नहीं किया जा सकता। फासीवाद की एक सिद्धांत दुर्बलता पर टिप्पणी करते हुए प्रोफेसर सेवाइन लिखते हैं कि फासीवाद विभिन्न स्रोतों से एकत्र किया गया विचारों का वह समूह है जिसे समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक साथ रख दिया गया है। फासीवाद के लिए हीगल के राष्ट्रवाद, प्लेटो के कुलीनतंत्रीय सरकार और बर्गसन के अबुद्धिवाद को एक ही दर्शन में मिलाना और उसके आधार पर व्यवस्था में सफलतापूर्वक कार्य करना कठिन था। दूसरा, राज्य को साध्य माना रूटीपूर्ण है। फासीवाद यदि राज्य को उचित महत्व दे तो इसमें भी किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, किंतु यह तो राज्य को एक रहस्यात्मक देवता का रूप प्रदान कर देता है और राज्य को अपने आप में ही एक साध्य मानता है। राज्य मानव जीवन की अत्यंत आवश्यकता है क्योंकि मानव जीवन के बिना राज्य की कल्पना ही नहीं है। वास्तव में राज्य व्यक्ति के लिए है, ना कि व्यक्ति राज्य के लिए। राज्य का मुख्य कर्तव्य मानव जीवन के लिए समस्त हितकारी साधनों को एकत्रित करना और एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसके आधार पर मानव अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। तीसरा, फासीवाद प्रगतिशील विचारों का विरोधी है। फासीवाद विचारधारा इतनी अपरिष्कृत और पिछड़ी हुई है कि इसे आज के सदियों पहले की विचारधारा कहा जा सकता है। 20वीं सदी का सभ्य प्रगतिशील समाज प्रजातंत्र विचार, स्वाधीनता, विश्व शांति तथा मानव मात्र की आधारभूत एकता में बड़ी श्रद्धा के साथ विश्वास करता है और इन्हें सामाजिक व्यवस्था के सुदृढ़ आधार बनाने के लिए प्रयत्नशील है। लेकिन फासीवाद जिन विचारों का प्रतिपादन करता है वे युग की पुकार है, बिल्कुल विपरीत है। फासीवाद युद्ध को अनिवार्य और उपयोगी बतलाते हुए विश्व शांति का विरोध करता है, प्रजातंत्र को एक बड़ा सरा हुआ सब घोषित करता है और मानव मात्र की असमानता का प्रतिपादन करते हुए भेड़ों की तरह जनता को नेता के अनुकरण का उपदेश देता है। इस प्रकार फासीवाद एक ऐसी प्रक्रियावादी और आदिम युग की विचारधारा है जिसे वर्तमान समय के एक सभ्य और प्रगतिशील राष्ट्र द्वारा अपनाना शोभा नहीं देता। फासीवादी विचार वर्तमान युग को अस्वीकार होने के कारण ही इस विचारधारा की इतनी शीघ्रता से पतन हो गया। चौथा, शक्ति राज्य का स्थायी आधार नहीं हो सकती। फासीवादी शक्ति को राज्य का स्थायी आधार मान लेते हैं जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। मानव जाति का अब तक का इतिहास बताता है कि भय और शक्ति पर आधारित राज्य कुछ क्षणिक सफलताएं भले ही प्राप्त कर ले, लेकिन उनका शीघ्र ही पतन हो जाता है। शक्ति पर एक अस्थायी तत्व होने के कारण अपनी प्रकृति से ही राज्य जैसी स्थायी संस्था का आधार नहीं बन सकती। रूसो के अनुसार शक्ति आवश्यकता का कार्य का या दुर्दशा का कार्य हो सकती है, परंतु वह राज्य का स्थायी आधार कभी नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में प्रोफेसर गीन की भाषा में कहना होगा कि राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है। फासीवाद राज्य की उत्पत्ति तथा और शक्ति ने ही उसे समाप्त कर दिया। इटली के एक अन्य विचारक फरेरो ने प्राचीन रोमन साम्राज्य को ध्यान में रखते हुए लिखा था, एक शक्ति जिसका निर्माण करती है, दूसरी शक्ति उसका विध्वंस भी कर देती है। रोमन साम्राज्य का निर्माण सेनाओं से हुआ था और इसका विध्वंस भी इसे उत्पन्न करने वाली सेनाओं से ही हुआ। वस्तुतः शक्ति ने जिस फासीवादी व्यवस्था को जन्म दिया था, शक्ति ने ही उसे समाप्त कर दिया। पांचवा, फासीवाद स्वतंत्रता की धारणा असत्य है। फासीवाद की स्वतंत्रता संबंधी धारणा भी नितांत रूटीपूर्ण है। उनका यह विचार गलत है कि स्वतंत्रता एक अधिकार न होकर कर्तव्य मात्र है और एक शक्तिशाली राज्य के आज्ञा पालन से ही व्यक्ति की स्वतंत्रता निहित है। यदि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रूप और उसका क्षेत्र राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया जाए तो अधिनायक की सत्ता के सम्मुख व्यक्ति की स्वतंत्रता का बलिदान हो जाता है। फासीवादी व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति सरकार अथवा राज्य रूपी मशीन का एक पुर्जा मात्र है जिसका ना कोई अपना व्यक्तित्व है और ना ही मौलिकता। फासीवाद राज्य की असीम सत्ता के पुजारी हैं और ऐसा राज्य की उत्पीड़न केंद्र के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। उससे रहने वाले व्यक्तियों को दासों से ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। छवां, फासीवाद केंद्रीय राज्य कला और विज्ञान की प्रगति में बाधक है। फासीवाद एक सर्वाधिकारवाद राज्य की धारणा में विश्वास करता है जो मानव जीवन के सभी पक्षों पर पूरा पूरा नियंत्रण रखता हो। इस प्रकार के अति केंद्रित राज्य में कला और विज्ञान की उन्नति हो ही नहीं सकती। कला और विज्ञान की उन्नति व्यक्तिगत स्वतंत्रता और साधना से होती है, जिसके लिए फासीवादी व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है। पूर्ण रूप से अनुशासित और नियंत्रित राज्य में तो कला और विज्ञान मृत्यु को ही प्राप्त होंगे। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन ने अपने लघु लेख विज्ञान और अधिनायकवाद में ठीक ही लिखा है कि एक अधिनायकवाद का तात्पर्य सब दिशाओं में प्रतिबंध लगाना है। इसका परिणाम सभी कार्यों को बेकार बनाना है। विज्ञान विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता वातावरण में ही उन्नति कर सकता है। प्रोफेसर कोकर के द्वारा स्वयं भी इस प्रकार का विचार व्यक्त किया गया है। वास्तव में इस प्रकार का केंद्रित राज्य मानव समाज के हित में हो ही नहीं सकता। सातवां, युद्ध और साम्राज्यवाद का मार्ग श्रेयस्कर नहीं। फासीवाद उस साम्राज्यवाद का समर्थन करता है जिसे आज के लगभग संपूर्ण जगत ने हे मान लिया हो। इटली के फासीवादियों व जर्मनी के नाजीवादियों का मत था कि राष्ट्र की उन्नति के लिए उनके प्रभुत्व क्षेत्र में वृद्धि होना चाहिए। इस प्रकार फासीवाद उस हे साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का पोषण करता है जिसका एकमात्र आधार शक्तिशाली राज्य द्वारा निर्बल राज्य का पोषण है। इसके अतिरिक्त फासीवादी साम्राज्यवाद के सहगामी युद्ध के भी समर्थक हैं। उनका यह विचार है कि युद्ध मनुष्य की श्रेष्ठ शक्तियों को विकसित करने का तरीका है और शांति मानव जीवन के विकास में बाधक है, पागलों का प्रलाप है। हाइड्रोजन और कोबाल्ट बमों के इस युग में युद्ध मानव जाति की सामूहिक आत्महत्या का ही दूसरा नाम हो गया है। ऐसी स्थिति में कोई भी विवेकशील व्यक्ति युद्ध की प्रवृत्ति का स्वागत कैसे कर सकता है? आठवां, धर्म और राजनीति का मिश्रण अनुचित है। फासीवादियों का एक प्रमुख दोष यह भी है कि वे धर्म और राजनीति को मिश्रित कर देते हैं। धर्म एक पृथक वस्तु है और उसे राजनीति के साथ मिश्रित कर देने का अर्थ है मनुष्य की राजनीतिक चेतना को कुचलना, जिसे किसी भी प्रगतिशील समाज के लिए प्रशंसा की वस्तु नहीं कहा जा सकता। धर्म और राजनीति के मिश्रण की ही बात एक रूढ़िवादी विचारधारा और वर्तमान समय में विश्व के लगभग सभी देशों में धर्म और राजनीति के मार्ग पृथक पृथक हैं। फासीवादी आरंभ में धर्म विरोधी था, लेकिन उसने परिस्थितियों की आवश्यकता धर्म से समझौता कर लिया। नौवां, फासीवाद निगमनात्मक राज्य का सिद्धांत केवल एक प्रदर्शन ही वस्तु है। फासीवाद व्यवस्था के अंतर्गत निगमनात्मक राज्य के रूप में पूंजीपति तथा श्रमिक हितों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है, किंतु निगमनात्मक राज्य का सिद्धांत सैद्धांतिक रूप में जितना श्रेष्ठ होता है व्यवहार में उतना ही निम्न। ऊपर से यह व्यवस्था श्रेष्ठ प्रतीत होती है, किंतु वास्तव में इन नियमों द्वारा फासीवादी व्यवस्था के प्रचार का एकमात्र कार्य किया गया। निगमों के नाम पर निर्धन श्रमिकों का शोषण किया गया और पूंजीपतियों का समर्थन। फासीवादी व्यवस्था के अंतर्गत एक निगमनात्मक राज्य की स्थापना की नहीं जा सकती थी, क्योंकि निगमनात्मक व्यवस्था शक्ति के विकेंद्रीकरण पर ही आधारित हो सकती है और फासीवाद का मूल आधार ही शक्ति का केंद्रीयकरण है। एक लेखक के शब्दों में फासीवाद आर्थिक व्यवस्था के एक ऐसे पिरामिड के समान है जो अपने आधार पर खड़ा हुआ ना होकर चोटी के बल पर उल्टा खड़ा हुआ है। फासीवाद निगमनात्मक राज्य का सिद्धांत श्रमिक संघवादी तथा श्रेणी समाजवादी विचारों से प्रभावित होते हुए भी एक प्रदर्शन की वस्तु मात्र है।